तो कंसंट्रेशन का आधार एक तो इंटरेस्ट है, दूसरा कंसंट्रेशन का आधार अंदर की प्यास है, अंदर की लगन है। यदि कोई खोज कर रहा है व्यक्ति और उसे वो चीज नहीं मिल रही है तो अपने आप पूर्ण एकाग्र हो जाता है वो। जैसे एक चोर है, रात में एक कमरे में सो रहा है, एक दीवार है, पतली सी दीवार है, और उसको ये पता चल जाता है कि दीवार के उस बाजू में बहुत सारा पैसा है, खजाने हैं। तो रात में सो सकेगा वो? बिल्कुल नहीं। उसको सारी रात भर चिंता होगी कि कैसे मैं वहां तक पहुंच जाऊं, और यही रात मेरे साथ है, मेरे पास है, तो एक रात है बस उसके पास। तो जब लक्ष्य निश्चित होता है तो अपने आप एकाग्रता आती है। जब ये पता चल जाता है कि समय बहुत ही कम है तो अपने आप एकाग्रता आती है। जो हमारी बात पूछी तो सबसे पहली बात तो हमको यही लगी थी कि हमारा समय बहुत चला गया है और बहुत कम समय हमारे पास है। इस एक बात ने हमको एकदम एकाग्र कर दिया कि इतना कम समय है कि इसमें हम क्या क्या करें और क्या नहीं करें। इसलिए जो जो हमको दिखता गया, जो जो हम देखते गए, वो ऐसी प्यास थी कि प्यास ने एकाग्र तो कर दिया, पर उसका लक्ष्य था कि ज्ञान को जानना है, समझना है क्या है ये। इसलिए बहुत कम समय में जो 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 हम पढ़ते गए ध्यान में आता गया, समझता गया और उसको ग्रहण करते गए। तो दो प्रकार के व्यक्तित्व है, एक वो जो एकाग्र है, दूसरा वो एकाग्रता नहीं है जिसमें, और दोनों का आधार है ट्रेनिंग। कोई जन्मजात एकाग्रता लेकर पैदा नहीं होता है, हर व्यक्ति की एकाग्रता अपनी अपनी है और एकाग्रता डिपेंड करती है लक्ष्य क्या है, समय कितना है, इंटरेस्ट कितना है और ट्रेनिंग कितनी ली है उसने एकाग्रता की।
बहुत बहुत थैंक्स, समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन है कि मेरी एक लड़की है, जॉब करती है, मतलब माँ ज्ञान में चलती है, और बेटी जॉब करती है, शादी के लायक है, वो लड़की ज्ञान में नहीं चलती है, और वो कहती है कि आपकी मर्जी है, आप भले शादी करो चाहे ना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी क्या करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि वो शादी करना ही चाहती है, मर्जी है आपकी, ऐसे में क्या करना चाहिए? ज्ञानी माँ है, उसे बाबा का ज्ञान बहुत क्लियर है, वो नहीं करना चाहती बेटी की शादी, लेकिन वो ज्ञान में भी नहीं आ रही है।
खलील जिब्रान की एक कविता है जिसमें उन्होंने लिखा है माता पिता के लिए, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, दे आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड, वो परमात्मा से तुमको उपहार मिले हैं, वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। इसके लिए मालकियत का जो भाव है, ओनरशिप का, वो हटा देना है। जो बच्चा जो बच्ची हमारे घर में आई है वो अपने हिसाब किताब लेकर आई है। बात केवल शादी की नहीं है, किसी भी निर्णय की बात उसके जीवन की, हम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफियर ना करें। हम केवल सजेस्ट कर सकते हैं तुम ऐसा करो, बाकी उसको क्या करना है कैसे करना है वो खुद ही डिसाइड करेगी। जो भी संतान है, चाहे शादी की बात, जॉब की बात या और कोई भी बात, जहाँ हम जबरदस्ती करेंगे या ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे हम ही दुखी होंगे। हम उसको कहो शादी करो तो वो नहीं करेंगी, हम उसको अगर कहो नहीं करो तो जबरदस्ती करेगी।
पर वो कई बार नहीं कहती है,
हाँ कुछ नहीं करती, वेट एंड वॉच,
नहीं करनी है तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब वेट एंड वॉच, मेरे को नहीं करनी है,
नहीं करनी है तो नहीं करनी है अपने आप। पर हमको
समाज
कुछ
है तो समाज,
समाज तो है अपनी जगह पर, वो तो
रहेगा, ज्ञान में चलती है, अभी क्या करे, सब लोग भी बोलते हैं।
फिर भी किसी पर हम, किसी दूसरे व्यक्ति पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम जबरदस्ती करें
उसका ही डिसीजन लेना होगा,
उसको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने ही डिसीजन लेने पड़ेंगे, और उसको जो करना है वो अपने आप करेगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और शादी तो एक ऐसी चीज है कि जिसको करना है वो चाहे दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए फिर भी वो करके रहेगा, चाहे कोई कुछ भी करे वो भाग के करेगा, वो उसके लिए कोई रोकता थोड़ी है। किसी ने, माँ बाप ने मना कर दिया तो रुक जाएंगे, ऐसा बहुत कम है, वो तो ऐसा फोर्स है कि कुछ भी करके करेंगे, और जिसको करना ही नहीं है वो भी वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी सूक्ष्म एक अहंकार काम कर रहा है कहीं ना कहीं। जब कोई वस्तु चीज़ हमको दुनिया वाले कहते मत करो, हम वही करना चाहते हैं। किसी बच्चे को करो ये, कहो ये करो, वो नहीं करेगा, तो ये उसका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, वो खुद डिसाइड करे क्या करना है कैसे करना है। रही समाज की बात, उसको तो बहुत सारी चीज़ें समाज की सहन करनी पड़ती, उसके लिए क्या कर सकते हैं।
बहुत सही बताया आपने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहू जो ज्ञान में चलती है, उसका बच्चा एबनॉर्मल है, जिसकी देख रेख में उस बहू का पूरा दिन चला जाता है, वो ज्ञान में चलती है, उसका पति भी खाता पीता सब है, पैसे का घर में कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है, सारे ही अवगुण हैं उसमें पति में, वो अपनी पत्नी को साथ भी नहीं देता, उस बहू ने पवित्रता के नियम को धारण भी करके रखा है, और उसके सास ससुर उसको बहुत परेशान करते हैं, उसकी ननद भी शादीशुदा है, अपने दो बच्चों के साथ घर आई हुई है, सास भी बहू का नहीं सोचती, अपनी बेटी का ही सोचती है, बहू के घर वालों को भी कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं, पियर वालों को भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने उनकी बहू को बिगाड़ दिया है, क्योंकि उसने पवित्रता को भी धारण कर रखा है, और वो सेंटर पर भी बहू कभी जा नहीं सकती है, वो ऐसे फ़ोन पे ही अपने माँ बाप बहनों से ज्ञान सुनती रहती है, लेकिन वो बहुत पक्के से ज्ञानी बन चुकी है। ऐसी सिचुएशन में अब बहू को कैसे आगे क्या करना चाहिए?
बहुत कड़ा हिसाब है, बहुत कड़ा हिसाब, पर जितनी अंधेरी रात होगी प्रभात तो होगा एक दिन। ऐसा हो नहीं सकता कि हिसाब किताब चालू ही रहे। जैसे जीवन की यात्रा है जन्म और मरण, वैसे हिसाब किताब की भी अपनी यात्रा है। एक पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, एक है एंड पॉइंट। एक समय आएगा जो ये सारे हिसाब किताब एकदम एक धक से हट जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में ये समझना है कि ये मेरे ही किसी पिछले जन्म का हिसाब किताब है। एक तरफ पति है, एक तरफ बच्चा है, एक तरफ दूसरे लोग है, तीनों से ही कड़ा हिसाब है आत्मा का। बजाय इसके कि अपने आप को और अपने नसीब को दोष देना कि ऐसा बच्चा ही क्यों पैदा हुआ, या ऐसा पति ही क्यों है, या घर वाले ऐसा क्यों है, सपोर्ट क्यों नहीं करते। यह आजमाइश का समय है, परीक्षा का समय है, एग्जामिनेशन का समय है, इसमें से उसको गुजरना ही पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र जो था, उसकी विश्वामित्र ने ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली, ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली कि सोच नहीं सकता था वो, पर वो सारी परीक्षाओं में पास होता गया और आखिर में विजयी हुआ। वैसे ही किसी आत्मा का हिसाब किताब शरीर के द्वारा है, किसी आत्मा का हिसाब किताब दूसरी आत्माओं के द्वारा है, किसी का प्रकृति के द्वारा है, किसी का जानवरों से है, किसी का और किसी से है, कुछ ना कुछ हरेक का अपना अपना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। इस आत्मा का भी ये यही समझे कि मेरा किसी जन्म का बहुत कड़ा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। जो बच्चा है वो भी क्यों आया उसी घर में और उसी माँ के पास क्यों आया, कुछ तो राज होगा उसके पीछे। जैसे एक साधु आता है, किसी गांव में आता है, सिपाही आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, क्या किया तुमने, चोरी की है, वो कुछ नहीं बोलता है, जेल में रहता है, एक हफ्ते के बाद छोड़ देते हैं। राजा कहता है कि तुमने चोरी नहीं की, सही चोर पकड़ा गया है। साधु चुपचाप जाने लगता है। राजा कहता है रुको, जब मैंने तुमको पकड़ा तो तुमने बोला क्यों नहीं तुमने चोरी नहीं की, और अब मैं तुमको जब छोड़ रहा हूं चुपचाप जा रहे हो। वो कहता है राजन, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं, उसके बाद भी मुझे जेल में डाला गया, वो भी 7 दिन, जरूर ये मेरे किसी और जन्म का पाप था। उसी तरह ये हिसाब भी किसी और जन्म का हिसाब है। इसके लिए हिसाब किताब की भी हमने कहा यात्रा है, शुरुआत और अंत, इसको भी खुशी खुशी से पार करते जाना है कि एक दिन ये सारे बंधन टूट जाएंगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसी आशा के साथ आगे बढ़ते जाना है और उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया, आपने कहा उसने पवित्रता धारण कर ली है, उसकी पवित्रता एक दिन धीरे धीरे सभी को परिवर्तित करेगी।
तो धैर्य, आगे भी लिखा है कि पति बहुत तलाक के लिए बोलता है लेकिन वो बच्चा ऐसा डिसेबल है, वो माँ के बिना रहता नहीं है और वो बच्चे को लेके मायके में तो नहीं वो कर सकती है उसको।
जब सारे दरवाजे बंद हो जाते भगवान कोई ना कोई दरवाजा खोलेगा जरूर। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। जब सारे दरवाजे खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे, अपने आप प्रभु के द्वार से एक ऐसा द्वार खुलेगा कि उसे अपने सारे उत्तर मिल जाएंगे। वेट वॉच,
वेट एंड वॉच, और परमात्मा को याद करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, लगन सारे विघ्नों को खत्म कर देंगे। तो किसी बच्चे ने शायद लिखा है योग की कौन कौन सी और विधियां हैं, क्या हम चलते फिरते भी योग लगा सकते हैं? लगा सकते हैं
तो ठीक है,
प्रैक्टिस बैठ के करने की प्रैक्टिस होगी तो चलते फिरते भी योग आराम से लगाया जा सकता है, समान का अभ्यास किया जा सकता है। अपने बच्चों को ज्ञान में चलने के लिए कैसे उत्साहित करें?
सबसे पहले करो नहीं, उसकी प्रवृत्ति देखो क्या है। किसी को भी जबरदस्ती किसी भी ज्ञान में लाने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वॉटर। घोड़े को तालाब के पास लिया जा सकता है पर जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता है। इसके लिए प्रयत्न ही छोड़ दो। जिसको ज्ञान में आना है अपने आप आएगा, और अपने बच्चों से जीरो एक्सपेक्टेशन रखना कि वो ज्ञान में आए। शुभ भावना है हमारी कि वो आ जाए, पर उनकी प्रवृत्ति भी देखो, उनके इंटरेस्ट देखो। इनको इंटरेस्ट है संसार में, घूमने फिरने में, फैशन में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और सिनेमा में और पार्टीज में और संसार के मनोरंजन में, और हम चाहते हैं वो ये सब छोड़ के ज्ञान में आ जाए। क्यों आएंगे? आप ये सब करो यहाँ तो आएंगे हम। हर एक का अपना स्वभाव है, ड्रामा का छोटा सा भाग याद रखना है, छोटा सा पार्ट। जैसे हम कहते हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, उसी तरह हर आत्मा का भाग्य भी फिक्स्ड है। वो जो आत्मा है हो सकता है अभी ज्ञान में नहीं आया, उसकी शादी हो जाएगी और उसके बच्चों के द्वारा वो ज्ञान में आएगा 10 साल के बाद, और हम चाहते हैं कि हम ही क्रेडिट ले ले कि वो हमारे वजह से ज्ञान में आया, नहीं आएगा। और ये जिद क्यों? जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। न भी आए परंतु एक अच्छा इंसान बनकर रहे, बस एक चरित्रवान व्यक्ति रहे, बस इतनी हमारी इच्छा हो, इतना हम उसको प्रेरणा दे। वो एकदम ड्रग एडिक्ट ना बन जाए, एकदम विलासी विकारी व्यक्ति ना बन जाए। इतनी भी हमने उसको ट्रेनिंग दे दी, उसको अनुशासित कर दिया, काफी है। जरूरी नहीं है कि वो भगवान को ही पकड़ ले। ये सब करो, मॉरल एजुकेशन दो, अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएगा धीरे धीरे। आज नहीं आएगा, 10 साल के बाद आएगा, बीच बो के रख दिया है। ज्ञान का विनाश नहीं होता, इसके लिए ये जिद छोड़ देनी है सबसे पहले। तो ठीक है, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक।
नेक्स्ट प्रश्न है, भाई जी आपकी तरह बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें?
हमारी तरह नहीं बनना है, बाबा की तरह बनना है। ये पुरुषार्थ ही गलत है। बाबा ने कहा डू नॉट फॉलो, ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करना है, बाप को फॉलो करना है। हम आपको फॉलो करेंगे और आपको एक दिन हमारा एक अवगुण का पता चल जाएगा, फिर आप करेंगे अरे धोखा हो गया, ऐसा हो जाएगा ना। आपने कहा अरे हम तो इनको क्या क्या समझते थे और ये ऐसा ऐसा करते हैं, अरे 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 बिल्कुल खराब हो गया ये तो धोखा हो जाएगा, फिर दुख होगा। इसलिए फॉलो केवल एक निराकार को करना है जो संपूर्ण है।
ठीक है, फॉलो फादर। योग में बैठने से शक्ति मिलती है लेकिन शक्ति लेने के लिए योग में बैठते हैं तो मन नहीं लगता, स्थिर नहीं होता मन, तो शक्ति कैसे लें? इस विशेष सर्कल को कैसे तोड़ें?
योग किसी स्वार्थ के लिए नहीं करना है, योग अर्थात प्रभु प्रेम की बहती धारा। योग कोई पुरुषार्थ नहीं, योग परिणाम है। परिणाम है परमात्मा प्रेम का, उस प्रेम को अंदर बढ़ाते जाना है, उसके ज्ञान को अंदर बढ़ाते जाना है। जो परिणाम होगा वो होगा लिंक, वो होगा कनेक्शन। लास्ट संडे की मुरली, वो जो चुने हुए अव्यक्त महावाक्य थे, उसमें था योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। उसमें था बाबा ने कहा था सारे दिन भर योग की लिंक न टूटे। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम उससे प्यार कैसे बढ़े। ये नहीं कि हमको योग में बैठेंगे फिर शक्ति मिलेंगी, फिर शक्ति को काम में लाएंगे, ये तो स्वार्थ हुआ, ये सकाम कर्म हुआ। हमारा योग, बाबा ने कहा योग शब्द ही प्रयोग मत करो, याद प्रयोग करो, याद की यात्रा, अविरल धारा बहती रहे याद की। और याद के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, संबंध चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए, उसका परिचय चाहिए। उसके ज्ञान को बढ़ाओ, उसके परिचय को बढ़ाओ, उस संबंध को गहरा कर दो। छोटे छोटे छोटी छोटी बातों में बाबा को यूज करो, उसकी मदद मिलेगी। और जब वो मदद मिलती है, जैसे हम बहुत कठिन परिस्थिति में आए हैं और कोई आके मदद कर दे, अपने आप उसके उपकारों के हम गीत गाते हैं। उसने हमारी इतनी मदद कर दी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, सड़क पर थे, भिखारी जैसे थे, और कोई आए और उसने हाथ दे दिया, सहारा दे दिया, हमको अपने घर रख लिया, खाने को दिया। इंग्लिश के एक ऑथर ने लिखा है कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बना, बहुत बड़ा डॉक्टर जिसका मेडिकल फील्ड में बहुत नाम है। उसने अपने जीवन की कहानी लिखी, मैं छोटा सा बच्चा था, माँ मर गई, घर पे कोई नहीं था, मैं भटक रहा था यहाँ वहाँ, एक घर पे गया और पूछा पानी है क्या, एक माता थी उसने दरवाज़ा खोला और उसको मेरी हालत पे दया आई और उसने मुझे अंदर बुलाया और एक ग्लास दूध का दिया और वो पीते ही मुझे इतनी शक्ति लगी क्योंकि कितने दिनों से भूखा था, कोई था नहीं मेरे पास, और फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर शायद कुछ और हुआ और किसी ने उसको अपनाया और उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया एक दिन। और एक दिन उसके हॉस्पिटल में एक बूढ़ी सी महिला भर्ती हुई और जो ढूंढ रही थी कि कोई उसको ऐसा सर्जन मिल जाए कि जो उसका ऑपरेशन करे, और कोई तैयार नहीं था उसको हाथ लगाने के लिए क्योंकि हाई रिस्क केस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। अचानक एक डॉक्टर आया किसी हॉस्पिटल में और उसने उसका सब कुछ किया, और उसको ऑपरेशन किया, सब कुछ किया, और उसकी छुट्टी होने का दिन आया और बिल पे करना था। तो उसने माताजी ने पूछा बिल कितना हुआ, तो वहां से एक लेटर लिख के आया, बिल ऑलरेडी पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, बिल तुम दे चुकी हो, जो तुमने मुझे दूध पिलाया था ये वही लड़का था। तो ऐसे व्यक्ति जिसने उपकार किया हो उसको कभी हम भूलते नहीं है। उसके लिए बहुत छोटी सी बात थी, उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी, दूध दे दिया बस, पर वो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी वो। तो जो हम पर उपकार करता है उसको हम भूलते नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक माँ यहाँ है, बेटा कहीं और है, उसको कुछ भी हो रहा है, उधर बुखार आ गया पता चल गया, नींद नहीं आती है माँ को, वो कहती है कि अभी मैं कोशिश करती हूँ, आधा घंटा हो गया, अभी मैं याद नहीं करूँगी, बहुत भारी हो रहा है दिमाग। याद अर्थात प्रेम, याद अर्थात संबंध, याद अर्थात परिचय, याद अर्थात उपकारों को, प्राप्तियों को याद करना, ये करते करते अपने आप योग होगा।
बहुत ही सेटिस्फेक्टरी आंसर दिया भाई सब ने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग की नस ब्लॉक है, उसे गुस्सा नफरत आ जाता है, उसे बोझ समझाते हैं तो समझता नहीं है, उसे और भी गुस्सा आ जाता है, गुस्से में वो मरने के लिए भागता है, क्या करें फिर उस टाइम।
बाबा के महावाक्य है, जब तक किसी एक आत्मा के प्रति भी मन में घृणा है तुम संपन्न नहीं बन सकते। ब्लॉकेज इसलिए है कि किसी के प्रति गहरी निगेटिविटी है, किसी के प्रति एक घृणा है अंदर, नफरत है, बदले का भाव है, उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, इतना हमारे साथ अत्याचार किया, इतना कटु शब्द हमको बोले, हमको जब जरूरत थी तब सहायता नहीं की, ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे मन में घृणा है। जब तक हम इस संसार के हर एक व्यक्ति को माफ नहीं कर देते तब तक ये नस ब्लॉक ही रहेगी, कभी ना कभी वो क्रोध, आवेश, चिड़चिड़ापन बीच में प्रकट होगा। क्या इस संसार की बाबा ने जो कहा विश्व कल्याणकारी, या वास्तव में विश्व कल्याणकारी है? हम उत्तर आएगा बिल्कुल नहीं है। उधर भूकंप हो गया, वहां सकाश दी, और घर के जो बाजू में साथ में रहता है भाई बहन माँ बाप या साथी, वहां रोज भूकंप आ रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। वहां सुनामी आ गई, बैठे और सकाश दे दी, काम पूरा हुआ। यहां रोज सुनामी आ रहा है किसी के मन में, हमारे ही मन में। तो जब तक मन में किसी के प्रति निगेटिविटी है वो नहीं जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है जो उसका बगीचा है और वो फावड़े से कुछ खोदता है रोज, एक दिन देखता है वो फावड़ा गायब हो गया, किसने चुराया? उसका जो फार्म है उसी के बाजू में एक दूसरा झोपड़ा है और वहां एक माँ रहती है, उसका बेटा रहता है 15-20 साल का, उसको शक होता है इसी ने चुराया होगा, वो फावड़ा नहीं है, उस लड़के ने चुराया होगा। और 3 दिन तक वो उस लड़के को देखते रहता है, उसकी हर हरकत को देखता है और शक होता है, हाँ जरूर यही है, देखो चुप रहा है मुझसे, जरूर यही है। एकदम मन निगेटिविटी से भर जाता है, पर कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, केवल ऑब्जर्व करता है, हाँ हाँ बस यही है, हाँ यही है, हाँ हाँ देखो देखो कैसे कर रहा है, एक बार मिल जाने दो इसको, देखता हूं मैं क्या करना है इसका। और 3 दिन के बाद वो फावड़ा उसी के घर में मिलता है और अब ये बच्चे को देख रहा है, उसी लड़के को, और कहता है कितना मासूम दिखाई दे रहा है। अब तक उसी व्यक्ति के प्रति घृणा थी, नफरत थी, निगेटिविटी थी, और जब फावड़ा यहां मिल गया अब वही व्यक्ति वही सारी हरकतें कर रहा है और कहता है कि अरे कितना मासूम सा दिखता है चेहरा। परिवर्तन यहां हो गया, सृष्टि यहां बदली, बाहर की सृष्टि बदल गई। उसी तरह जब तक किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, आवेश है, चिड़चिड़ापन है, उसको माफ नहीं किया है, बदले की भावना है, तब तक ये चालू रहेगा। इसके लिए 3 महीने का प्रोग्राम बनाओ कि उन सब आत्माओं को इमर्ज करो कि जिन्होंने हमको बहुत दुख दिया है, अपमान किया, सताया, सबको माफ कर दो, क्योंकि वो सब हिसाब किताब था, चुप्तू हो गया, बहुत अच्छा हुआ।
बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल एंगर? आई ट्राई बट समटाइम्स आई गोट वेरी मच इरिटेटेड एंड इट लीड्स टू ए लॉट ऑफ एंगर। हाउ टू कंट्रोल एंगर?
एंगर, क्रोध, क्रोध एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति उसके बारे में रोज सीखते जाता है, खुद ही नई नई बातें। और क्रोध को यदि जीतना है तो पहले क्रोध को समझना पड़ेगा। केवल ये कहने से नहीं होगा कि मुझे क्रोध मुक्त बन जाना है। क्रोध है क्या, क्रोध क्यों आया, अपने आप को देखना है। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत क्रोध किया, अब वो कमरे में आ जाए, आ गया, अब आईने में देखे या फिर पर्दे पर देखे, मैं जब क्रोध कर रहा था तो कैसे दिख रहा था? क्रोध को क्षणिक पागलपन कहा जाता है, इज अ टेम्पररी मैडनेस। अपने आप को देखो, यह है मेरा क्रोध का चेहरा। और जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके मुख से क्या निकलता है वो उसको भी नहीं पता रहता है, और ऐसे ऐसा जहर निकल जाता है कि रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक बार टूट गए जोड़ो कितना क्रैक तो रही जाती है आखिरी तक। क्रोध क्यों आया, स्रोत क्या है क्रोध का, सोर्स क्या है? क्रोध आया, किन परिस्थिति में आया, किस व्यक्ति के प्रति आया, किस स्थान पर आया, किस समय आया, इसका भी अध्ययन करना है और उसकी गहराई में जाना है, बजाय इसके कि खाली संकल्प कर लिया आज से क्रोध नहीं करूंगा। ऐसा अगर करो तो हम 100% क्रोध करेंगे, ये संकल्प काम नहीं करेगा कि मैं नहीं करूंगा। पहले जो आया किस दरवाजे से आया, जैसे ये हॉल है, इस हॉल की जितनी खिड़कियां हैं और दरवाजे सब बंद कर दो, एक खिड़की चालू रखो, बाहर तूफान आ रहा है तो क्या होगा, सब तूफान अंदर आएगा क्योंकि एक खिड़की चालू है। केवल संकल्प करने से नहीं होगा, मैं तूफान को अंदर नहीं आने दूंगा, अरे खिड़की तो चालू रखी है, फिर कैसे संकल्प काम करेगा? सबसे पहले ये ढूंढो, क्रोध की गंगोत्री कहां से बह रही है, कहां से आए क्रोध, कारण, टाइम, समय, किस व्यक्ति के प्रति, और फिर उसको समझते हुए क्रोध को जीतना है धैर्य से, क्रोध को जीतना है पोस्टपोन करने से। जैसे जर्मन फिलोसोफर था जॉर्ज गुर्जियफ, वो जब 7 साल का था तो उसके पिताजी मरणासन्न थे, उसके पिताजी ने उसको बुलाया, जॉर्ज कम हियर, इधर आओ। उसके पिताजी ने कहा, जॉर्ज तुम्हारे लिए देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, कोई विरासत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, पर एक शिक्षा तुमको मैं देकर जाता हूं जिसको तुम जीवन भर याद रखना, और वो ये है, जब भी तुमको क्रोध आए 24 घंटे के लिए उसको टाल देना। आज नहीं करूंगा, किसी ने हमारे बारे में ऐसी बात कह दी कि बस हम तो चाहते कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दे, उसको भी बता देगा हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, ऐसी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारे बारे में ऐसे कहने की। उसके पिताजी कहते 24 घंटे टाल दो। तो क्रोध को जीतना है धैर्य से, क्रोध को जीतना है स्वमान से, क्रोध को जीतना है स्थगित करने से, पोस्टपोन करने से, क्रोध को जीतना है उसके कारण को ढूंढने से, क्रोध को जीतना है आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाने से, और क्रोध को जीतना है उस आत्मा को क्षमा करने से, बिकॉज दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, उनको वो क्या कर रहे हैं उसको ही नहीं पता। और क्रोध को जीतना है सत्य से, जो सत्य में स्थित है उसे भय नहीं, उसे क्रोध किस लिए, जो सत्य है उसे सत्य पर विश्वास है, दुनिया वाले कितना भी बातें बनाए हमारे बारे में पर मुझे पता है मैं सत्य हूं, अंदर से भय नहीं है तो क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना काफी है मेरे ख्याल से।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, फादर को डिस्क की प्रॉब्लम है, क्या वो ग्लोबल हॉस्पिटल में ठीक हो सकते हैं?
डिपेंड करता है उनके रिपोर्ट्स क्या है, MRI क्या है, और बहुत सारी मेडिकल क्वेश्चन है, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है उससे कंसल्ट कर किया जा सकता है डायरेक्टली।
एक क्वेश्चन है, माताएं पवित्रता धारण करती हैं लेकिन उनके हस्बैंड अपवित्रता की वजह से उनकी सेटिंग कहीं और हो जाती है, जिसकी वजह से माताओं की घर में तो फिर कोई वैल्यू रहती नहीं है, घर का माहौल बहुत बेकार हो जाता है, धन के तरीके से आर्थिक स्थिति भी में भी परेशानी होती है, तो भी ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, छोड़ करके तो जा नहीं सकती हैं।
यज्ञ के शुरुआत से ये बात होती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। पवित्रता एक ऐसी चीज है कि जब जब आत्मा उसको धारण करेगी उसको विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। जब भी कोई माता ज्ञान में आती थी और ब्रह्मा बाबा को पता चलता था, ब्रह्मा बाबा पूछते थे, अच्छा वो माता ज्ञान में आई, उसके घर में झगड़ा हुआ? नहीं हुआ, मतलब एकदम कच्ची है। ज्ञान में आई का प्रमाण है झगड़ा, झगड़ा अभी तक नहीं हुआ, मतलब फेल, नापास। तो जब जब कोई भी ज्ञान में आएगा और जब जब कोई भी पवित्रता धारण करेगा उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। पति विरोध हो जाएगा, सास ससुर विरोध में हो जाएंगे, कभी कभी बच्चे और बच्ची भी विरोध में खड़े हो जाएंगे, सारा समाज, सारे रिश्तेदार। परंतु एक बात भूलना नहीं है, पवित्र बनने का आदेश दिया किसने है? किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। और हमारा जो मास्टर है, जो गुरु है, जिसकी मत पर हम चल रहे हैं, योगक्षेमम वहम्यहम, हमारी रक्षा भी वही करेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, जैसे यहां पर है, यह सब कुछ सहन करना पड़ेगा। यदि वो पति जिसको वास्तव में हमसे प्यार है, रियल प्यार होता तो हमारी बात वो मानता, अर्थात उसका प्यार मुझसे था ही नहीं, उसका प्यार केवल शरीर से था, मुझसे नहीं था उसका प्यार, उसका प्यार केवल उसकी वासना की पूर्ति था, प्यार वो था ही नहीं, मैं केवल एक साधन थी भोग का। बस इस सत्य तक भी पहुंचना है, इसको भी समझ लेना है, और ये समझकर वैराग उत्पन्न कराना है। ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि अगर ये आत्मा, ये माता अपने पैरों पर खड़ी रह सके, अपना पैसा खुद कमा सके, अपना जीवन यापन खुद कर सके तो बहुत अच्छा, ताकि किसी के सामने पैसों की भीख मांगने की जरूरत ना पड़े।
परंतु उसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहती है और हाँ। बच्चों का घर का काम भी इतना ज्यादा होता है उसको, तो अभी अर्निंग करने के लिए भी वो बाहर जा नहीं सकती है। ऐसे में क्या
कुछ कुछ हिसाब ऐसे होंगे कि जो समय पर चुक्त होंगे, अपना टाइम लगाएंगे ही, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया है रावण के अत्याचार हो रहे, सारे देवता और सब लोग विष्णु के पास गए, त्राहि माम रक्षा करो। विष्णु ने कहा ठीक है। फिर राम जी का जन्म हुआ, अत्याचार चालू है, राम जी बड़े हो रहे, अत्याचार चालू है, राम जी बड़े हो गए, वनवास हुआ, अत्याचार अब भी चालू है। देवताओं ने तो कहा था कि अभी अभी खत्म कर दो, पर ऐसा हुआ नहीं, हर चीज को टाइम लगता है। वन में चले गए, 13 वर्ष वन में बिताए, अभी भी अत्याचार चालू है, और वो 14वें वर्ष में जाकर सब कुछ हुआ। मतलब कितना धैर्य, कितना धीरज, तुरंत कुछ नहीं होता है। बाबा मेरे सारे हिसाब चुक तो कर दो, बाबा कहेंगे तथास्तु और हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। हर हिसाब किताब की यात्रा है, और बड़ी धीरे धीरे कंस के अत्याचार चालू है, पर कृष्ण आके सीधा कंस को मारने थोड़ी चला जाता है, पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, ऐसा सब दिखाया हुआ है। ये तो भक्ति मार्ग में भी है, वो यहां पर भी है। जो भी कड़े से कड़े हिसाब है, तुरंत चुक तो नहीं होंगे, हो सकता है अगले जन्म भी चले जाए। इसलिए वो तो जो चल रहे अपनी जगह चलेंगे, आंतरिक स्थिति ज्ञान और योग से मजबूत करनी है, बस ये हमारे हाथ में है। परिस्थितियों को बदलना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है खुद को बदलना, अपने नजरियों को बदलना। That's it.
बहुत बहुत धन्यवाद। एक माता ज्ञान में चलती है, जो उसकी बेटी जिस घर में बहू है, और बेटी तो वैसे ज्ञान में नहीं चलती है, ससुराल वाले उसको बहुत तंग करते, गालियां देते है ना, अच्छा कमाती भी है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी अर्निंग है, अच्छी जॉब है, उसके बाद भी उसके ससुराल वाले से बहुत परेशान करते हैं। माता वैसे ज्ञान में चलती है, लेकिन उसके योग में डिस्टर्बेंस होती है, बार बार अपनी बेटी के लिए तो मोह कहो कुछ कहो, उसकी बेटी बहुत तंग है। अच्छा कमाने के बावजूद, पढ़ाने के बावजूद भी उसकी बेटी का हाल अच्छा नहीं है, तो उसके योग में बाधा आ रही है, क्या करें?
बाधा आने का कारण बेटी नहीं है, मोह है। मोह सकर व्याधिन कर मूला, उसका दुख का कारण वो स्वयं है, उसकी बेटी नहीं। उसके बेटी को तो शादी कर दी, अब दे दिया। महाभारत में विदुर से धृतराष्ट्र कहता है कि मैं क्या करूं, दुर्योधन मुझसे ये सब कहने को कहता है, दुर्योधन मेरी बिल्कुल नहीं मानता है। दुर्योधन करता है, कहता है कि मुझे राज्य चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब मैं क्या करूं, मैं पिता हूं, मैं दुर्योधन का क्या करूं, क्या उसे मरने दूं? विदुर कहता है महाराज, दुर्योधन आपका पुत्र नहीं, आपका रोग है। दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका रोग है। बेटी की शादी हो गई, वो अपने चली गई, अब उसका अपना हिसाब है, उसे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, जो सता रहे या जो कुछ हो रहा है उधर, उसका पति है वो देखेगा। यहां मां अगर डिस्टर्ब होती रहे, अगर डिस्टर्ब होकर उसके बेटी का कल्याण होने वाला है तो भी डिस्टर्ब होने में फायदा है, पर इसके डिस्टर्ब होने से, इसके दुखी होने से उसकी बेटी को कुछ होने वाला है, कुछ फायदा? कुछ भी नहीं, यह तो कोई मार्ग हुआ ही नहीं। यहां तो यही सोचना है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, अब वो अपने घर में है, उसका पति है और उसका भाग्य है, वो अपना देखेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माता ज्ञान में है। अगर वो अपने आप को इसमें डिस्टर्ब करती रहे तो उसके डिस्टर्बेंस से उसकी स्थिति नीचे जाएगी, और किस तरह के वाइब्रेशंस उसके बेटी तक पहुंचेंगे। अगर उसके बेटी की वास्तव में मदद करनी है तो डिटैच हो जाओ पूरी तरह से। उसकी बेटी के मार्ग में यदि कोई बाधा है तो ये माता ज्यादा है, उसके ससुर कम, क्योंकि इसका मोह है। इस मोह को खत्म कर दो, यहां से डिटैच हो जाओ, हो सकता है जैसे माता की स्थिति ऊपर चली जाए इसके शक्तिशाली प्रकंपन से वो आत्माएं टच हो जाएगी। पर जब तक ये नीचे है और दुखी हो रही है और बार बार फोन करना, आज क्या हुआ, आज ये कहा, आज अच्छा वो कहा, आज अरे अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कुछ करती हूँ, फिर वहां से फोन रख रही है और फिर बैठ रही है, फिर दुखी हो रही है, ये कोई मार्ग तो है ही नहीं। मार्ग है वैराग्य, मार्ग है डिटैचमेंट, मार्ग है निर्मोही बन जाना, मार्ग है उसका जो होगा वो हो देखेगी, मुझे कोई लेना देना नहीं।
बहुत सही उत्तर दिया। अपने योग को इम्प्रूव करना है, उसके प्रकंपन का असर उधर होगा। एक क्वेश्चन है कि भाई जी, रियल ब्रह्मा भोजन की क्वालिटी कैसी हो, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल यज्ञ में उन लोगों की संख्या बढ़ गई है जो रोज नए नए पकवान पसंद करते हैं। आज यज्ञ में दिनों दिन स्पाइसी फूड बढ़ता जा रहा है, जो एक तरफ से राजसिक भोजन कहा जाता है। हम संगठन में रहते हैं, यज्ञ में समर्पित हैं, हमें अलग से सात्विक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे मन दुखी होता है, मन मार के खाना पड़ता है। अगर संगठन में अलग से भोजन बनाते हैं तो भी सभी को एक्सेप्ट नहीं होता है, क्या करें?
क्या करें? क्रांति की आवश्यकता है। और क्रांति में कई लोगों की बलिदान दी जाती है। क्रांति जब होती है बलिदान दिया जाता है उसमें, और क्रांति की लहर धीरे धीरे फैलती है। स्वतंत्रता सेनानी बनना पड़ेगा धीरे धीरे। सबसे पहले तो अपने आप से चालू करना है, और मुंह हमारा है, इसमें क्या डालना और क्या नहीं डालना ये हमारे हाथ में। किसी ने जगदीश भाई जी से पूछा था, भाई साहब ये क्या है, यहाँ पर इतना सारा भोजन बन रहा है, ये कोई योगियों का भोजन है? भाई साहब ने कहा, तुमको किसने बोला खाने के लिए, तुमको जो खाना है और खाओ और जाओ। वो चार प्रकार की सब्जी बन रही है, तुमको किसने कहा सारी खाओ, चार प्रकार की सब्जी बनी है, किसने कहा कि पूरी दो बार कटोरी भर के लो, थोड़ा सा लो। ये जो भी बातें बताई एक रीति से सब बहाने हैं, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। और जैसे बाहर वालों ने हमारा भोजन स्वीकार कर लिया कि ये बीके है ये हमारा नहीं खाएंगे, वैसे इस परिवार वाले भी एक दिन स्वीकार करेंगे। जैसे बाहर वालों ने स्वीकार कर ही लिया ना, किसी के घर में हम जाते हैं तो कहते हैं, जबरदस्ती करते हैं आपको कि खाओ बहन जी खाओ, नहीं खाते, वो सहयोगी है, उनको पता है ये लोग नहीं खाते। तो जैसे उन लोगों ने स्वीकार कर लिया, ये लोग भी स्वीकार करेंगे धीरे धीरे। पर ये प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म है और धीरे है, इसमें बाहर वालों का कम, अपने अंदर ही बहुत इच्छा है खाने की। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि दूसरे ऐसा ऐसा खाते ये रजोगुनी है, उसे अपने आप से पूछना चाहिए, मुझे कितनी इच्छा है, खुद भी तो इच्छा है, खुद ही इच्छा है ये सब करने की, इसलिए। परंतु अपने आप को बाजू में रख के दूसरों पर आरोप हम डालना ये थोड़ा आसान है, ये संकल्प की बात है।
सिंपल और कुछ खाना है तो सिंपल खाने के लिए तो कोई
सिंपल
ऐसी
तो
कोई
ऐसा
हो
ही नहीं सकता है कि नहीं खाए,
सिंपल खाने के लिए कोई मना नहीं करता,
कोई मना कर ही नहीं सकता कभी। मुंह आपका है, वो तो आपके अंदर ही इच्छा है, चटोरापन, स्वाद लोलुपता, इतने दिनों के बाद बना है। पानी पूरी रोज थोड़ी बनती है, आज तो बनी है और एक बार खाने से कुछ होगा, और खाने के बाद फिर हम ही प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ये खाना चाहिए क्या, ये तो नहीं खाना चाहिए ना, अरे खुद ही तो खाया।
और एक योगी तो जो चाहे वो कर सकता है, अपने योग को इम्प्रूव करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती है। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए क्या करें, अंदर डर रहता है कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए बताओ क्या करें?
विजुअलाइजेशन सबसे पहला है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनरी ऑडियंस को अपने सामने देखना है, काल्पनिक दर्शक प्रेक्षक, काल्पनिक सभा मेरे सामने बैठी है, 1000 लोग बैठे हैं और हम बोल रहे हैं, रोज इस दृश्य को देखना है। एक दूसरा, भाषा पर काम करना है, थोड़ा अध्ययन को बढ़ाना पड़ेगा, जो संसार के महान वक्ता हुए हैं उनके प्रवचनों को सुनना पड़ेगा, व्याकरण को ठीक करना पड़ेगा, भाषा की मास्टरी हो, कॉन्फिडेंस हो और जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु, उस पर संपूर्ण अधिकार हो। जिस बारे में हम बोलने जा रहे हैं, जो टॉपिक, जो विषय दिया है, उसकी एक एक बात हमको पता होनी चाहिए, तो ही उसके ऊपर बोला जा सकता है। जैसे हम खुद कभी भी बिना तैयारी के कुछ भी नहीं बोलते। यदि हमको कहा गया ये टॉपिक है, तो कितना देर तक उसकी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमको लगता है बिना प्रिपरेशन बोलना अर्थात अपना भी टाइम वेस्ट और सुनने वालों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमको ये नहीं करना है। इसके लिए जब भी कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसकी पूरी गहराई से उसको स्टडी करना होता है। जैसे एक टॉपिक दिया गया किसी को, एवर रेडी। अब एवर रेडी टॉपिक है, कब एवर रेडी रहे, कौन एवर रेडी रह सकता है, एवर रेडी रहने के लिए क्या क्या धारणा है, ऐसी बहुत सारी चीजें चाहिए। हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से उस टॉपिक को एक्सप्लोर करना है। और एक बात, एक शक्तिशाली स्पीच के लिए एक मिनट यदि बोलना है तो एक घंटे की तैयारी चाहिए। एक मिनट के लिए एक घंटे की तैयारी, तो एक घंटा भाषण है तो कितनी तैयारी चाहिए, फिर उतनी तैयारी चाहिए। तो प्रिपरेशन, मार्क ट्वेन इंग्लिश ऑथर है, उसने लिखा, इफ आई हैव टू स्पीक एक्सटेम्पोरे आई नीड एटलीस्ट 2 वीक्स। बड़ा व्यंगात्मक लिखा है कि यदि मुझे अचानक कहीं बोलना है बिना तैयारी के, तो मुझे 2 हफ्ता तैयारी के लिए चाहिए। अर्जेंट स्पीच यदि करना है तो बिना तैयारी के कोई भी भाषण नहीं होता है। व्याकरण, भाषा, उस विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान और प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें चाहिए, तब कहीं जाके कोई एक अच्छा शक्तिशाली वक्ता बनता है। कुछ कुछ वक्ता होता है जो जन्म से ही वक्ता बन के आते हैं, वो एक अलग। कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया, बचपन से ही वो क्वालिटीज उनमें है। कुछ कुछ एक्वायर करते हैं और कुछ कुछ जबरदस्ती वक्ता बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में बन जाते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज तो वो संस्था है, फैक्ट्री है, जहां स्पीकर्स निकलते हैं। हर एक स्पीकर है यहाँ, किसी को भी आके यहाँ खड़े करो, 1 घंटा तो माइक छोड़ेगा नहीं।
बहुत बहुत थैंक्स। आई थिंक सबको अपने सेटिस्फेक्ट्री आंसर मिल गए होंगे और सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स हो चुके हैं, सभी के हो गए ना, कोई रहा तो नहीं ना। एक ऐसी क्वेश्चन था सिंपल सिचुएशंस का, उसमें मेरे को कुछ इतना क्वेश्चन नहीं लगा, बाकी लगभग सभी के मिल गए ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, हाथ खड़ा करो। एनीवे अभी तो हो गया, टाइम भी फिनिश हो गया, अभी कनिष्का को गिफ्ट देंगे वीके डॉक्टर सचिन जी, बहुत ही सुंदर नृत्य करके सबका मन मोह लेती है।